प्रश्न है मानव का संबंध विधान के नाते विधायक से है या विधायक के नाते विधान से है। प्रश्नकर्ता का अपना विचार क्या है, वे अगर विधायक को मानते हैं तो उनका संबंध विधायक के नाते विधान से रहेगा, लेकिन सभी का ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग इस विचार के होते हैं कि वे जगत के, समाज के, प्रकृति के विधान को मानते हैं और विधायक को नहीं मानते हैं। फिर भी जो विधान को मानता है उसके अनुसार जीवन यापन करता है उसको विधायक मिल जाता है न मानने पर भी। इसलिए प्रधानता विधायक की है और साधक कहाँ से आरंभ करेगा ये उसकी अपनी रुचि की बात है। अगर वह ईश्वर विश्वासी है तो विधायक को मान लेगा पहले और विधान उसके जीवन में आ जाएगा पीछे, और अगर वह विचारक है तो विधान को मानकर चलेगा पहले और विधायक का साक्षात्कार हो जाएगा पीछे। वर्तमान जीवन को सुंदर बना सकने की निराशा ही क्या जन्म मरण से छुटकारा पाने को सोचने का कारण नहीं है? ऐसा नहीं है। और जो लोग वर्तमान जीवन को सुंदर बना सकने की निराशा, तो सुंदर शब्द का अलग अलग अर्थ होगा। जो लोग जीवन के सही मूल्यों को सामने रखकर उसको सुंदर बनाने चलते हैं उनको किसी प्रकार से निराशा नहीं होती है। प्रश्नकर्ता को ऐसा लग रहा है कि जैसे जो चाहते थे वो संसार में नहीं मिला, तब चलो उधर की बात सोचें, तो हारा हुआ व्यक्ति अध्यात्म जीवन में प्रवेश नहीं पाता है। विचारक प्रवेश पाता है। विचार के प्रकाश में नाशवान को नाशवान जानकर उसकी आशाओं को स्वेच्छा से छोड़ देता है, उसका प्रवेश अध्यात्म जीवन में होता है। और जो सुख की वासनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो पूर्ति के उपाय में निराशा मिली इसलिए वो अध्यात्म को सोचे, तो ऐसे हारे हुए का सौदा अध्यात्म जीवन नहीं है। प्रश्नकर्ता ने लिखा है वर्तमान जीवन को सुंदर बना सकने की निराशा। तो मानव सेवा संघ की प्रणाली में जीवन को सुंदर बनाने में निराशा किसी को होती ही नहीं है। सुंदर बनाने में निराशा नहीं हो सकती। विलास की पूर्ति में निराशा हो सकती है, कामना की पूर्ति में निराशा हो सकती है, इच्छाओं की पूर्ति का सुख भोगने में, उसके प्रयास में निराशा हो सकती है, सुंदर बनाने में निराशा कभी होती नहीं। क्यों? क्योंकि मानव जीवन सुंदर बनता है सेवा त्याग और प्रेम से, और इसमें सेवा त्याग और प्रेम में किसी प्रकार से निराशा आ नहीं सकती। इसलिए निराशा शब्द को सुंदरता के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, ये गलत हो गया। और जब जीवन सुंदर हो गया तो वह छूटे या न छूटे क्या अंतर पड़ता है? यहाँ भी वही गलती हो रही है प्रश्नकर्ता भाई से। सुंदर शब्द का वे गलत अर्थ ले रहे हैं। कपड़ा सुंदर, खाना सुंदर, महल सुंदर, सब प्रकार का सुख, सब प्रकार से सुविधा, इसको अगर वे सुंदर ले रहे हैं इसीलिए ये गलती हो रही है, अन्यथा ये प्रश्न नहीं बनता है, ये प्रश्न ही गलत है। स्वामी जी कहते हैं यदि हम में से बुराई निकल गई तो हमें जगत में बुराई दिखेगी नहीं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि जगत में बुराई नहीं है, परंतु हमें जगत में बुराई देखने का अधिकार नहीं है। कृपया उक्त की व्याख्या करके समझाएं। तो प्रश्नकर्ता भाई से मैं यह पूछ रही हूँ कि महाराज जी के ये वचन जो हैं वो आपको मंजूर हैं कि नहीं है? व्याख्या तो उसके बाद में कर दूंगी, लेकिन पहले आप अपना विचार बताइए कि इस विचार से आप सहमत हैं। किसका प्रश्न है भाई? अच्छा, तो आप इससे सहमत हैं? मैं व्याख्या करूंगी, बहुत बढ़िया, लेकिन आपका विचार जानना चाहती हूँ। लिखा है, यदि हम में से बुराई निकल गई तो हमें जगत में बुराई दिखेगी नहीं। सहमत नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि अपने में बुराई न होने पर भी जगत की बुराई दिखती है, ठीक है। अब इसी ढंग से सोचेंगे हम लोग। बात ऐसी है कि एक परसेप्चुअल फील्ड होता है, प्रत्यक्षीकरण का एक क्षेत्र होता है, मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो काम करता है, और अनेक अवसरों पर, कम से कम अपने साथ जो कुछ हुआ है वो तो मैं पक्की तौर से जानती हूँ, और साइकोलॉजी में जो पढ़ा है उसका उससे समर्थन भी है, कि सचमुच जिस बात की संभावना मेरे भीतर नहीं है, किसी भी व्यक्ति के संबंध में मेरी जो धारणा है कि ये विद्यार्थी हैं, कि ये साधक हैं, कि ये सज्जन हैं, तो वे इस प्रकार की गलती कर सकते हैं, ऐसी संभावना मेरे मस्तिष्क में नहीं रहती है, तो उस प्रकार की गलतियों को अनेक बार अपने साथ होने पर भी कभी ख्याल में ही नहीं आता है कि ये भला आदमी ऐसा कर सकता है, तो दिखता ही नहीं है। अनेक बार ऐसा पाया है मैंने, बरसों तक धोखे खाते 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 बड़ी कठिनाई से, बड़े दुख के साथ, जब एकदम आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है तब बड़े दुख के साथ मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि अच्छा ऐसा आदमी भी ऐसा कर सकता है। तो चोट खाते जा रहे हैं, घाटा लगता जा रहा है, आघात पड़ता जा रहा है, और प्रेम पूर्वक उसके साथ मैं रहती जा रही हूँ, और कभी सोचने में ही नहीं आता है कि ऐसा आदमी ऐसा कर सकता है, तो ध्यान में नहीं आता, दिखती ही नहीं बुराई। एक तो ये बात हो गई। साइकोलॉजी वालों ने ये कहा कि वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। सचमुच जगत कैसा है वैसा हम नहीं देखते हैं, कैसा देखते हैं कि जैसे हम हैं। तो अपना जो परसेप्चुअल अपरेटस है उसमें जो दोष है तो वही दोष जगत में दिखाई देता है, वो जैसा है वैसा ही जगत दिखाई देता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी हो गया। तीसरी बात जो आपने कही वो भी बहुत हद तक व्यवहारिक जगत में देखने में आती है, कि सचमुच कोई खास दोष जो अपने में नहीं है तो भी दूसरों में हम लोगों को दिखता है। ऐसा अगर नहीं होता तो समाज के बड़े बड़े सुधारक जो स्वयं शुद्ध जीवन को लेकर, सर्वहितकारी भाव को लेकर दुनिया में आए, और दुष्ट प्रकृति के लोगों की दुष्टता के विपरीत उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और बृहद समाज के साथ होने वाली बुराई को रोका, ऐसा भी हुआ, तो वो दोष उनमें अपने में नहीं था, फिर भी उनको दिख रहा था कि इस एक विकार युक्त व्यक्ति के कारण से अनेकों को कष्ट हो रहा है। तो जब उन्होंने उसको परसीव किया कि ये दुष्टता कर रहा है तब तो उनको ऐसा मालूम हुआ। इस तरह से आपका कहना भी इस अंश में सही है, और इसी अंश में सही है, उसको सर्वांश में नहीं लेना चाहिए। और आखिरी बात क्या है कि सचमुच अगर सीमित अहम भाव, और ये मैं हूँ और ये जगत है, ये दार्शनिक सिद्धांत है ना, तो मैं हूँ और जगत है, तो अपने से भिन्न एक जगत दिखाई देता है, एक है मूल सत्ता और एक में ये द्वैत का भास हो रहा है, एक मैं हूँ एक जगत है, तो दोषों का दर्शन अगर होता है तो इस द्वैत के कारण ही होता है। तो ये बात ठीक तरह से हम लोगों को कब मालूम होगी, जबकि द्वैत का नाश हो जाए, तो वहां पहुंच करके ये सिद्धांत बिल्कुल 100% पक्का उतरेगा। क्योंकि अपने से भिन्न किसी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो दोष दिखेगा ही नहीं। दोष जहाँ से दिखता है वो जड़ कट जाएगी। तो स्वामी जी महाराज ने हमेशा आखिरी बात को लेकर के सूत्रों का गठन किया है। तो वो कह रहे हैं कि यदि हम में से बुराई निकल गई तो हमें जगत में बुराई दिखेगी नहीं। और दूसरी बात अब कह रहे हैं, जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि भाई हमारे में बुराई न होने पर भी वो बुराई जगत में दिखती है, तो उसके लिए उन्होंने कल्याणकारी उपाय बताया कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि जगत में बुराई नहीं है, परंतु हमें जगत में बुराई देखने का अधिकार नहीं है। अब इसका अर्थ उन्होंने साधक की दृष्टि से बताया और ये बताया कि जगत में बुराई है कि नहीं है इसको तो कोई वीतराग पुरुष ही देख सकेगा, जान सकेगा, कर सकेगा। और हम लोग जब तक बिल्कुल वीतराग नहीं हो गए हैं तो आंखों में दूसरों का दोष दिखता तो है, लेकिन अगर दूसरों को हम दोषी मानते रहेंगे तो अपना कल्याण नहीं होगा, इसलिए मना किया कि दूसरों की दूसरों में बुराई देखने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, इसमें भी एक बड़ा रहस्य है। वो रहस्य ये है कि जिसमें मुझको दोष दिख रहा है वो सचमुच उसमें दोष है कि नहीं है, इसमें तो संदेह है। और मैं अगर मान लूं तो मानने से दोनों तरह का अपराध बनेगा, अपना चित्त भी अशुद्ध होगा और उसके प्रति भी द्वेष भाव बढ़ेगा। तो साधक को अपना कल्याण अभीष्ट है। और ये सच्ची बात है कि अपना कल्याण जिसको अभीष्ट नहीं है उसके द्वारा दूसरे का कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए भी स्वामी जी ने मना किया कि दूसरों में दोष देखो मत, अधिकता तो है ही है हम लोगों को। और इसके लिए उन्होंने बताया कि अगर कोई आदमी तुमको बुराई करता हुआ दिखता है तो ये कैसे हो सकता है कि तुम देखते रहो और वो बुराई करके पार कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध बोध माता जी इस आश्रम में पहली अधिष्ठात्री वही हैं, उन्हीं के कारण आश्रम बना। तो उनसे एक बार बातचीत हो रही थी, कोई ऐसा प्रसंग आया होगा, कुछ घटना घटित हुई होगी, तो स्वामी जी बार बार कहें कि माता जी ये आदमी ऐसा काम करके चला गया, तुम जिंदा कैसे रही। इसका अर्थ क्या है कि गलत करने वाला बलवान भी हो और मेरी हानि भी हो सकती हो, प्राण हानि भी हो सकती हो, जान भी जा सकती हो, तब भी अगर लगता है कि ये बुराई है तो आंखों से देखते हुए उसको होने नहीं देना चाहिए, ये बात महाराज कह रहे हैं। तो इसका अर्थ तो ये स्पष्ट है ना कि बुराई जगत में दिखती है। तो दो बातें हो गई, एक तो ये हो गई कि बुराई अगर देखो तो प्यार से, दुलार से, फटकार से, मित्रता से, जैसे भी हो उस व्यक्ति का हित दृष्टि में रख करके उस बुराई को रोकने की चेष्टा करो, लेकिन बुराई करने वाले को बुरा समझना दिल में, बुराई को रोकने में कुछ सक्रिय भाग न लेना और उस पर पूरा विचार न करना और थोड़ी सी बात से किसी में बुराई का ख्याल बना लेना और उसको दिल में बसाए रखना, ये अपना सर्वनाश है, ये बात है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि भाई एक तो दूसरे में जो बुराई दिख रही है वो कितने अंश में सही है अपने को पता नहीं है, है लेकिन क्या जाने थोड़े को मैंने ज्यादा समझ लिया है कि ज्यादा को थोड़ा समझ लिया, ऐसा भी होता है। आदमी कभी कभी बड़ा भयानक होता है और अपने को पता ही नहीं चलता, थोड़ी बहुत मामूली गलती उसकी जान करके हम लोग उसकी तरफ से उपेक्षा कर लेते हैं, कहते हैं छोड़ दो जाने दो, लेकिन बड़ा भयंकर परिणाम निकलता है। तो कभी बुराई बहुत बड़ी होती है और हमको छोटी लगती है, और कभी बुराई बहुत छोटी होती है और अपने को बहुत बड़ी लगती है। तो संदेहात्मक बात यह है, पक्की बात नहीं है। और दिखाई दे तो उसको रोकना हम सभी का धर्म है, और बुरे को बुरा समझते रहना अपने लिए घातक है, अपना बड़ा भारी नुकसान होता है, इसलिए मना किया। और एक बात और महाराज जी ने बताई, संत समागम में कहीं पर लिखी हुई बात है ये कि भाई देखो, समाज में कहीं पर बुराई सिखाने का स्कूल खुला हुआ तुमने नहीं देखा होगा, किसी स्कूल किसी संस्था के ऊपर साइन बोर्ड नहीं देखा होगा कि यहाँ पर हिंसा की ट्रेनिंग दी जाती है, कि यहाँ पर चोरी करना सिखाया जाता है, कि यहाँ पर धोखा देना सिखाया जाता है, ऐसा तुमने नहीं देखा होगा। तो बुराई की टीचिंग नहीं होती है, पढ़ाई नहीं जाती है बुराई, फिर भी बुराई समाज में फैलती है, तो इसका कारण क्या है? तो इस पर उन्होंने प्रकाश डाला और ये कहा कि किसी को बुरा जान करके और उसके सुधार के लिए तुरंत ही उसके साथ जो व्यवहार करना चाहिए कर डालो, जोर डाल करके रोकना हो जोर डाल के रोक दो, प्यार करने से समझा सको प्यार करके समझा दो, कुछ ले दे करके वो मान जाए तो ऐसे कर दो, ईश्वर से प्रार्थना करके उसको सुरबुद्धि जग जाए तो ऐसे कर दो, तो वस्तु का घाटा लग जाए और आदमी बुराई करना छोड़ दे, समझ में आ जाए उसके, तो प्यार से समझे तो प्यार से समझा दो, डांट से समझे तो डांट से समझा दो, सहायता करने से काम बने तो सहायता करके उसको बचा दो, तो जैसे भी हो तुरंत उसके साथ वैसे करना चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी बुराई को दिमाग में रखना नहीं चाहिए। और ये बड़ी गलत बात है कि हम बुरा समझते रहें और करें कुछ नहीं, तो उसमें एक सूक्ष्म हानि ये होती है कि मेरे भीतर जो दूसरों के प्रति बुरे भाव बनते रहते हैं, विचार बनते रहते हैं, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, तो बुरे विचारों की उत्पत्ति जो मेरे मस्तिष्क में होती है वो दूसरे मस्तिष्क के भी सुप्त बुरे विचारों को जगाती रहती है, तो इस तरह से बुराई फैलती है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि देखो, अगर बिना स्कूल खोले और बिना ट्रेनिंग दिए समाज में बुराई फैल सकती है, तो बिना स्कूल खोले बिना ट्रेनिंग दिए सद्विचारों का प्रभाव भी हो सकता है, तो सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको सदबुद्धि मिले, सब अच्छे रहें, तो किसी भी व्यक्ति को, निकटवर्ती जन समुदाय में से कोई है, चाहे दूरवर्ती है चाहे कैसा भी है, अगर कोई उसकी त्रुटि कमी दिखाई देती है और भीतर में ये भाव जगता है कि हे भगवान ये आदमी अच्छा हो जाता तो ठीक था, तो इससे आपका भी चित्त शुद्ध होगा और आपकी सद्भावना से उसमें भी सद्भाव जगेगा, तो ये बताते हैं।
एक बात और है, मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि ये काम खराब है, इसको नहीं करना चाहिए, तो ये कायरता होगी कि हम उससे न कहें, उससे ईश्वर से प्रार्थना करके छोड़ दें?
दोनों ही बातें होनी चाहिए,
ईश्वर से प्रार्थना भी करें,
प्रार्थना भी करनी चाहिए
और कहने की हिम्मत भी रखनी,
कहने की हिम्मत भी रखनी चाहिए, और उसके बदले में अपने पर जो हानि आवे उसको सहने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? भाई साहब, स्वामी जी महाराज ने जो उसमें बात बताई है वो बड़े रहस्य की है कि बुराई करने वाला भी तुमको अपना मालूम हो ना, तब तुम सब कर सकते हो और सब सफलता मिल सकती है। गैरियत का और द्वेष का भाव जब रहता है भीतर तो कहने में डर भी लगता है और उससे जो हानि होती है उसको सहने को आदमी तैयार भी नहीं रहता है, ये दुष्टों की दुष्टता में कौन फंसे ऐसा, और जो बुराई कर रहा है वो भी मेरा अपना है, तो हम कैसे देख सकेंगे कि वो गलती करके अपने को गड्ढे में डालेगा, देखा ही नहीं जाएगा।
ये तो ठीक है, अपन कर सके, लेकिन
ना वो नहीं मानेगा, वो कहे को मानेगा?
हाँ, वो नहीं मानेगा,
उसको तो आप टोकने जाइएगा तो 10 ऊपरी बात बना करके आपकी बात को गलत करने के लिए वो जो चाहे वो करेगा, होता है
तो
एक गलती किसी की बताओ तो उसके समान वो 5 गलती आपकी बताएगा, तो सुनेगा ही नहीं कि आपने उसको क्या कहा, तो ये सब तो उसकी प्रतिक्रिया को तो देखना ही नहीं है,
देखने में नहीं, अपने इतनी हिम्मत होनी चाहिए,
इतनी हिम्मत होनी चाहिए
तभी कर,
और भीतर में इतना प्यार होना चाहिए कि उसकी रुखाई से अपने जीवन में निरस्ता ना आवे। ये भी तो हो जाता है ना, और दूरी दूरी होने लगती है। हम लोग मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पढ़ा करते थे, पढ़ाया करते थे फिजिकल नियरनेस एंड साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। शरीर से एक परिवार में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत हो रही है और एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना जरूरी है, तो फिजिकल नियरनेस हो गया। शरीर से नजदीक नजदीक रहते हुए भी बड़ा जबरदस्त साइकोलॉजिकल डिस्टेंस होता है, और वो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस जो है मनोवैज्ञानिक दूरी, मन से एक दूसरे से दूर हो गए तो वो व्यक्ति के जो घर का वातावरण है, समूह का चाहे आश्रम का, बहुत नीरस हो जाता है। हिम्मत भी होनी चाहिए और दिल में प्यार भी होना चाहिए। स्वामी जी महाराज की बातें क्यों नहीं बुरी लगती थी, और जो लोग बुरा मान गए वे लिंक में से छूट ही गए, जो लोग बुरा मान गए वो छूट ही गए, पछता रहे हैं कि बड़ी भूल हो गई मुझसे। और जिन लोगों ने बुरा नहीं माना, बुरा लगने पर भी सोचा कि भाई ये तो हमारे ही चिंतक हैं, हमारे प्यारे हैं, जरूर मेरी भलाई के लिए ऐसा करते होंगे, तो खूब कस के स्वामी जी महाराज ने डांटा फटकारा, लेकिन उसके भीतर कितना प्यार है अगाध। तो जिन लोगों ने इसको जाना उनको बुरा नहीं लगा, और स्वामी जी महाराज को बिल्कुल ही डर नहीं लगता था, कोई भला मानेगा कोई बुरा मानेगा, और बिगड़ते तो कह भी देते, अरे बुरा मानेगा तो दो रोटी और खा लेना, मैं तुमको गैर मानता हूँ क्या, तू मेरा पराया है क्या, खूब डांटते अच्छी तरह से हिला डुला देते, और फिर उसके बाद बस वही प्यार है। तो ऐसा वही कर सकता है जिसको कि बुराई करने वाला भी गैर ना लगे। हाँ, बड़ी भारी बात है। तो अपना लगेगा तो अपने से रहा ही नहीं जाएगा उसका सुधार किए बिना। बहुत जोरदार बात है। तो प्यार का होना और अपनेपन का होना, हृदय का सरस होना, और बुराई करने वाले की बुराई के प्रति भी अपने में उदारता रखना, ये सब ऐसी अच्छी बातें हैं कि ध्यान लगाने में, भजन कराने में, भगवत भक्त होने में, सब में मददगार होती है। और हृदय में अभिमान रखो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और जो दूसरे लोग हमारे साथ हैं ये बड़े नादान हैं, बड़े अजानकार हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा समझ करके अपने गुणों के अभिमान पर उनके संग अड़ जाओ तो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस तो होगा ही, और एक सामूहिक जीवन का मजा तो फीका हो ही जाएगा, अपने भीतर भी नीरसता भर जाती है जो कि साधना के लिए बहुत हानिकारक है। तो साधु संत महात्मा जो होते हैं, करुणावान संत पुरुषों के जीवन को देखा होगा आपने, जितना भी देखने को मिला सुनने को मिला सब में आपने देखा होगा कि भूल करने वाले के प्रति भी उनके भीतर बड़ी प्रियता होती है, बहुत प्यार करते हैं, और उनके प्यार का ही जादू होता है जो कि भूल करने वाले को सुधारता है। नहीं तो समझ बूझ क्या बुराई करने वालों की कम होती है। क्रिमिनल साइकोलॉजी हम लोग पढ़ा करते थे तो उसमें ये आता था कि क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बहुत ऊंचा होता है, एवरेज से ज्यादा। स्वराज्य होने के बाद शिक्षण संस्थाओं में एक प्रोग्राम बनाया गया कि प्रोफेसर लोग जाएंगे और जेल में जेल के कैदियों को पढ़ाएंगे। तो हमारे उन दिनों में मैं पढ़ती थी तो हमारे आचार्य लोग जब जेल में से पढ़ा करके आते थे तो बातचीत करते थे तो कहते थे कि जेल के कैदियों से बात करो और यहाँ आकर क्लास में बात करो, दोनों में बड़ा फर्क मालूम होता है। वे तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि मुंह से एक बात निकले नहीं और झट पकड़ लेते हैं, उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बहुत ऊंचा होता है। तो उनकी समझ बूझ कम थोड़े है कि आपका समझाना बुझाना वो मानेंगे, आप एक ढंग से समझाएंगे तो वो 10 बात आपको समझा देंगे, तो उससे काम नहीं बनता है। लेकिन हृदय में अपनापन, ये बुराई करने वाला ही मेरा ही है, चाहे जगत के नाते मेरा है, चाहे आत्मा के नाते मेरा है, चाहे प्रभु के नाते मेरा है, ये मेरा ही है। ये अपनेपन का भाव जो है वो व्यक्ति की वाणी में शक्ति देता है, जादू देता है, स्पर्श में वो अनुभव देता है कि जिससे बुराई करने वाले का दिल बदल जाता है। और इसके अलावा ये बात भी है कि हम सब लोग सर्वज्ञ हैं नहीं, और सब प्रकार के सब विकार नाश हो गए ऐसा भी नहीं, तो जहां कहीं अपनी गलती मालूम हो तो अपनी को भी स्वीकार करना चाहिए कि अच्छा हाँ मैंने ऐसा समझा था, ये ठीक नहीं है, अच्छी बात हो गई, बात खत्म, अपना ही मानना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम की सहज विवेचना सहज शब्द से उनको बहुत हंसी आती है। सहज विवेचना क्या होगी भाई? स्वामी जी महाराज ने एक बार एक घटना सुनाई थी। ये कहा था कि गंगा जी के तट पर बहुत से साधु संत लोग ऊंचे ऊंचे दर्जे का सत्संग कर रहे थे, बहुत देहातीत जीवन की चर्चा चल रही थी। तो स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज भी थे उस समय, ऐसा मेरा ख्याल है, उन्हीं के लिए कहा था कि और किसी महात्मा के लिए। तो कहने लगे कि बहुत बढ़िया से ऊंची ऊंची बातों की चर्चा होती रही होती रही। तो वो महात्मा दूर बैठे थे, सुन रहे थे। जब उनकी जब चर्चा करने वालों की चर्चा खत्म हो गई तो वो महात्मा कहने लगे कि गंगा के तट पर असत के संग में सत की चर्चा, गंगा के तट पर असत के संग में सत की चर्चा, देहधारी हो करके देहातीत जीवन की बात करना। तो ऐसे ही मुझे ये लग रहा है कि एक ओर तो आप सत्यम शिवम सुंदरम कह रहे हैं और दूसरी ओर कह रहे हैं सहज विवेचना। तो सत्य से दूर रहकर, शिव से दूर रहकर, सुंदर से दूर रहकर सहज विवेचना कैसे हो पाएगी भाई? कठिन भी विवेचना बन जाए तो समझो कि बन गई। और अब चर्चा ले लीजिए, और चर्चा ये है कि मनुष्य को स्वभाव से ही सत्यम शिवम सुंदरम आकर्षक लगता है, पसंद आता है। सत्य में नित्यता है, सातत्य है, कंटिन्यूटी है, उसमें कहीं पर कुछ टूटने का प्रश्न नहीं है। और शिवम में कल्याण है सब प्रकार से, और सुंदरम में आकर्षण है। तो सबसे अधिक सुंदर, परम सुंदर, अनंत सौंदर्यवान कौन है? जो कीड़े मकोड़े को, प्राणी मात्र को, वनस्पति को, चर अचर को, सबको अपनी मधुरता से, अपनी सुंदरता से अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। तो ऐसा जो एक तत्व है जो कि इस भौतिक जगत में प्रकट नहीं है, अपने रूप में प्रकट नहीं है, जगत के रूप में तो प्रकट है ही, तो वहां वो दिखाई नहीं देता। यहाँ जो आज सुंदर लग रहा है कल असुंदर बन जाता है, आज जो बहुत ही आकर्षक लग रहा है कुछ ही देर में विकर्षक हो जाता है, अभी जो सत्य लग रहा है थोड़ी देर में मिथ्या प्रमाणित हो जाता है। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि जो हमारे भीतर सत्यम शिवम सुंदरम की मांग को भर सके, वही जगत में कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर अब सोचे मनुष्य कि है भी नहीं और अपने को चाहिए भी, ऐसा कैसे हो? तो मैं मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता मानती हूं कि मरणशील शरीर को लेकर के, और वो पुस्तकों में से पढ़ता है, वाणी से विवेचन करता है, श्रवण से सुनता है, क्या क्या पढ़ता है, क्या सुनता है, क्या बोलता है, तो मरणशील शरीर को लेकर के अविनाशी जीवन के बारे में बातें करता रहता है, सोचता रहता है, विचारता रहता है। इसका अर्थ ये है कि जिस समय हम लोग नाशवान शरीरों के साथ संबंध जोड़ के बैठे हैं, उसी समय हमारे ही अहम में अविनाशी तत्व भी विद्यमान है, और चूंकि मैंने नाशवान से संबंध जोड़ा, इसके कारण से भीतर में सीमा आ गई, पराधीनता आ गई, नीरसता आ गई, तो उसको सहन नहीं कर सकते, तो जो वर्तमान दशा है वो अच्छी लगती नहीं है, सहन होती नहीं है, और जो जीवन है वो प्राप्त जैसा लगता नहीं है, तो उसकी ओर आकर्षित हो करके सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में चर्चा चलती रहती है। अब करना क्या चाहिए? तो करना ये चाहिए कि जो बाहरी संबंध हैं हमारे, आंखों को लेकर दृश्य जगत से, कान को लेकर ध्वनि जगत से, जीभ को लेकर स्वाद जगत से, इस प्रकार पांच ज्ञानेंद्रियां हैं अपने पास, तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भौतिक तत्वों का जो संपर्क अपना बनता है, उसके संपर्क बनने के परिणाम को अच्छी तरह से देखना चाहिए। इसी के लिए व्यक्तिगत सत्संग की बात मानव सेवा संघ में बड़े जोर से बताई गई। अकेले अकेले बैठे रहो और देखते रहो, सोचते रहो, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, तो जिस समय आपको पता चलेगा कि सचमुच यहाँ पर कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे भीतर की मांग को पूरी कर सके, तो फिर बाहर का मूल्य घट जाएगा। छोड़ करके भाग जाएंगे सो बात नहीं है, कि आंख बंद करके दृश्य जगत से अपने को हटा लेंगे सो बात नहीं है। महाराज जी कहते कि अरे भगवान ने आंखें दी हैं, भले आदमी खोल करके देख दुनिया को, रूठ के बैठता काहे को है संसार से, आंख बंद करके गुफा में घुस के, बनाने वाले ने बनाया है तो देख, लेकिन आंखें खोल कर देख, विवेक के प्रकाश में देख, जीवन के अनुभव को सामने रखकर देखो। तो बंद करने की बात नहीं है, कि आंखों को फोड़ देने की बात नहीं है, कि भाग जाने की बात नहीं है, बात केवल इतनी है कि विवेक के प्रकाश में इनके परिणामों को देख करके अगर इनका मूल्य जीवन में से निकल गया, तो सचमुच सत्यम क्या है वो अपने आप भीतर से प्रकाशित हो जाएगा। और उसी तरह से जो सत्य है वह शिव भी है, जो सत्य है वह सुंदर भी है, वो एक ही की तीनों विभूतियां हैं, एक ही अनंत तत्व है, एक ही अनंत जीवन है, उसको सत्य कहेंगे तो वो शिव भी है सुंदर भी है, उसको शिव कहेंगे तो वो सत्य भी है वो सुंदर भी है, उसको सुंदर कहेंगे तो वो सत्य भी है और शिव भी है, तो एक ही अनंत तत्व की विभूतियां ये हैं, और उसी तत्व के आधार पर हम लोगों का व्यक्तित्व निर्मित हुआ है, इसलिए जब तक हम उससे विमुख हैं तब तक उसकी आवश्यकता मालूम होती है, और विमुखता मिट जाती है तो उससे अभिन्नता हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा त्याग क्या है? जीवन का सबसे बड़ा त्याग ये है कि अपने को त्याग का भास न हो कि मैंने त्याग किया। अब जहां से आवे, जब तक किसी को मालूम होता है कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने इतना दे दिया, मैंने इतना कर दिया, तब तक उसको त्याग का बंधन बना रहेगा, अहम का पोषण होता रहेगा। और सबसे बड़ा त्याग है कि त्याग का भास त्याग दिया जाए, उसको पता ही नहीं चले कि मैंने इतना त्याग किया। यदि दुख सहने की सामर्थ्य आ गई है परम पिता की सहज कृपा मानकर, किंतु आए हुए सुख से तिलांजलि लेने की सामर्थ्य नहीं है, इससे आगे का साधन क्या है? आहा, ये तो बहुत ही सहज है। यदि दुख सहने की सामर्थ्य आ गई, तो मानव सेवा संघ ने सहने की सामर्थ्य, सहने का परामर्श नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भैया तुम दुख के भोगी मत बनो, दुख के उपयोगी बनो। तो सहन करने की सामर्थ्य तो सच पूछिए तो परमात्मा सभी प्राणियों को देते हैं। दुख के आने से पहले दुख से जितना घबराता है आदमी, आ जाने के बाद उतना नहीं घबराता है, और जिस क्षण में नया नया दुख आ गया उस समय आदमी जितना अधीर रहता है कुछ दिनों के बाद उतना अधीर नहीं रहता। दुखी लोगों को संभालते हुए महाराज जी ने कितनी बार कहा कि देखो भाई, जहाँ से दुख आता है उसको सहने की शक्ति भी वहीं से आती है। तो सहने का परामर्श यहाँ नहीं दिया गया है, परम पिता की सहज कृपा मानकर उसको तो हर्ष पूर्वक उसका स्वागत करने का परामर्श दिया गया कि अगर किसी प्रकार की प्रतिकूलता आ गई तो प्रभु की कृपा मानो, उनके मंगल में विधान का काम मानो, तो हर्ष पूर्वक उसका स्वागत करो। आओ भाई आओ, देखो बैठो, बताओ मुझे क्या कहने आए हो, क्या सिखाने आए हो, कौन सा त्याग कराने आए हो कि दुख हरी हरी से मिलाने आए हो। तो ये सहना नहीं हुआ, ये हर्ष पूर्वक उसका स्वागत करना हुआ। और जिसको दुख का हर्ष पूर्वक स्वागत करने आ गया उसमें सुख की वासना रहेगी नहीं, तिलांजलि देने की ताकत खोजनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से ही बात पूरी हो जाएगी। जरा भी उसमें लालच शेष नहीं रहेगा। ये बात, ये दोनों तरह की बातें इकट्ठे क्यों मन में उठती हैं? अब मेरी समझ में आती है। पहले तो मैं उलझ जाती थी, स्वामी जी महाराज मुझको बताते रहते थे कि देखो भाई बात ऐसी नहीं है, उलझो मत। तो पहले तो लगता था कि ये दोनों कंट्राडिक्टरी बातें एक साथ हो गई, परस्पर विरोधी, लेकिन ये परस्पर विरोधी नहीं है। अभी तक मैंने दुख का हर्ष पूर्वक स्वागत नहीं किया, इसलिए सुख की दासता मिटी नहीं। तो लगता है कि दुख को तो सह लेंगे भाई, लेकिन सुख कैसे छोड़ेंगे? तो दूर से अभी आप कल्पना कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, परंतु अगर दुख का स्वागत करने आ जाएगा, उसमें प्रभु की कृपा का दर्शन होने लग जाएगा, तो सुख का कोई मूल्य आपके जीवन में रहेगा ही नहीं। फिर भी अब आप ही के स्टेज पर उतर के आप ही के स्तर से मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि अगर सुख आवे और आपके भीतर उसके प्रति कुछ आकर्षण मालूम हो तो सर्वसमर्थ प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मैं तो दोनों तरह की प्रार्थना करती हूँ, प्रतिकूलता आती रहती है आती रहती है आती रहती है, डरती रहती हूँ तो घबरा करके कभी कभी कहती हूँ कि हे महाराज मैं बहुत दुर्बल हूँ, आप तो जानते हैं, उतना ही दीजिएगा जितने में मैं संतुलन बनाए रखूँ, उससे ज्यादा मत ले आना, अभी ठहर जाओ, उतनी ताकत नहीं है मुझ में, हम तो संभलेगा नहीं, ऐसे भी कहती हूँ। और अगर अनुकूलता भी आती है तो उसमें भी याद करती रहती हूँ, महाराज अच्छा तो लग रहा है, आपने बड़ी कृपा की, ये मेरा राग रहा होगा मिटाने के लिए आपने ऐसा किया, लेकिन महाराज और ज्यादा नहीं, संभाल के रखिएगा मुझको, हम संभाल नहीं सकेंगे, कहीं कहीं उसमें भूल न जाऊं। ये भी एक तरीका है, अगर डर लग रहा है प्रश्नकर्ता भाई को कि क्या करेंगे, आए हुए सुख को तिलांजलि देने की सामर्थ्य नहीं है, तो सामर्थ्य भले नहीं है लेकिन आप उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं कि आए हुए सुख को पहन न ले, ओढ़ न ले, खा पी न ले, खुराक न बना ले, तो आप सजग रहिए, जैसे जैसे अनुकूलता सामने आवे समर्थ प्रभु को पुकारते रहिए तो बच जाइएगा। ये दोनों ही बातें होती हैं सुख, और मैं तो समझती हूँ कि दुख का आना साधक के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना सुख का आना। दुख हमेशा सजग बनाता है, दुख हारी हरि की याद दिलाता है, अहम को गला देता है, जिस सुख सुविधा के आधार पर हम अपने को दूसरों से सुपीरियर मान रहे थे, अपने को बहुत भाग्यशील मान रहे थे, जिस सुख सुविधा में आने वाली कठिनाइयों को हम भूले हुए थे, तो वो सुख सुविधा जब चली गई, तकलीफ आ गई, तो दोनों ही तरह की बातें होती हैं। अभिमान के घट जाने से चित्त शुद्ध और शांत होता है, और दुख हारी हरि के याद आने से दुख सदा के लिए मिट जाता है। तो मैं तो समझती हूँ कि साधक की साधना में और उसके आंतरिक जीवन की प्रगति में दुख का आना उतना खतरनाक नहीं है जितना सुख का आना। इसलिए साधकों को तो आए हुए सुख के प्रति अधिक सावधान रहना चाहिए। अब प्रश्न जितने आए थे, जो कुछ सूझा सो मैंने निवेदन कर दिया। अब और किसी बात की व्याख्या सुननी हो तो बताइए। बिना आधार के शांत हो जाए और प्राण बिना निरोध के सम हो जाए, ये उसी के क्रम में है। होता है ऐसा, बिना निरोध के प्राण सम होता है। जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं योगी जन, उस दिन चर्चा हो रही थी कि प्राण शक्ति का मन की शक्ति से बड़ा घना संबंध है। जैसे सांस चलती रहती है ना, सांस की गति के साथ साथ मन भी गतिशील रहता है, और मन की गति अगर धीमी हो जाए तो आप देखेंगे सांस की गति भी धीमी हो जाती है। अगर कोई समस्या आपके सामने आ गई और गहन चिंतन में आप लग गए गंभीर, तो सांस भी धीरे धीरे चलने लगती है। इतना तो अनुभव होगा ही। तो मन की गति और सांस की गति, दोनों की गति में बड़ा घना संबंध है। इसलिए योग के अभ्यास में मन की गति को शांत करने के लिए प्राणों पर नियंत्रण का एक बड़ा भारी अभ्यास चलता है, वो पद्धति है। क्या पद्धति है वो? कि सांस अगर भीतर गई तो भीतर भी उसके ठहरने का एक स्थान है, तो भीतर ले जा करके उसको ठहराओ। बाहर निकलने से पहले वहां अंदर जा करके कुछ देर रुके, और बाहर निकलने के बाद भी उसके लय होने का महाप्राण का क्षेत्र है। भीतर भी है बाहर भी है। तो सांस जब निकलती है तो बाहर जा करके भी वो प्राण वायु जो है वो महाप्राण वायु में कुछ देर विराम ले। तो प्राकृतिक बात भी है, जिस सोर्स में से ये प्राण वायु मिली हम लोगों को, उसमें जा करके अगर थोड़ी थोड़ी देर टिकती रहेगी तो उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी, सबल होती रहेगी। तो इसीलिए इस प्रकार का एक अभ्यास चलता है कि अंदर जाए तो अंदर में कुंभक करो और बाहर जाए तो बाहर में कुंभक करो। कुंभक का मतलब ये है कि वहां जा करके कुछ देर ठहर जाए। तो प्राणों का निरोध कहलाता है ये, कि उसकी गतिशीलता को जगह जगह पर जा करके रोकना। भीतर जाए तो भीतर भी और बाहर आवे तो बाहर भी, ये रोकने का अभ्यास जो चलता है ये प्राणों का निरोध कहलाता है। हाँ हाँ हाँ, सांस की गति प्राण शक्ति है, सांस की गति के साथ उसका संबंध है। पर्यायवाची में सांस की गति मन की गति उसका संबंध। तो ये निरोध का एक अभ्यास चलता है कि इस प्रकार से उनको रोका जाए, और ज्यादा देर तक इन दोनों को एक जगह पर एक साथ रोक लिया जाए तो गतिशीलता के रुकने से बहुत प्रकार की भौतिक शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है। ऐसा तो बहुत छोटे छोटे अभ्यासी लोग भी जान लेते हैं, दूसरों के मन में क्या हो रहा है सो जान लिया, उधर क्या हो रहा है सो पता चल गया, बहुत प्रकार के चमत्कार सब आता है। तो ये चला अभ्यास के बल पर। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे जैसे उन्होंने कहा कि दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर हो जाए, चित्त बिना आधार के शांत हो जाए, वैसे ही उन्होंने कहा कि प्राण बिना निरोध के सम हो जाए। तो ये किसका होता है और कब होता है? तो उसमें अकिंचन अचाह अप्रयत्न समर्पण।